ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் புஷ்பதன்ஸ் சிவ மஹிம ஸ்தோத்ரா இன் ஹிந்தி, ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி நிஷ்தானந்தஜி சரஸ்வதி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
क्योंकि जब आप जान जाएंगे कि आप ही ब्रह्म है तब होगा क्या? हाँ, बहुत ही बड़ी बड़ी चीज को हम जानने जा रहे हैं, उसकी गरिमा रखने के लिए भी उसके बारे में कोई कुतर्क कर रहा है तो सामने कुतर्क नहीं करना है, उसे समझाना ही नहीं है. क्यों? क्योंकि आपका साधन अभी चल रहा है, याद रखना. अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति होकर आत्म साक्षात्कार हो गया तो वो बात ही अलग है, उनको छूट है कहने की. पर जब हम साधना कर रहे हैं और कोई कुतर्क करने वाला सामने आ गया तो सावधानी से सुन लीजिए कि उसे इस प्रकार जब हमने ये तर्क देके ये बात करके राष्ट्र की बात करके जो समझाने की व्यवस्था समझने की जो चेष्टा की वो चेष्टा वो कुतर्क करने के वाले के साथ कभी नहीं करना, आपके समय और वाणी की व्यर्थ चले जाएंगे. मेहरबानी करके किसी को भी समझाने की कोशिश नहीं करना. आप यहाँ खुद आए, समझ लिया, बात खत्म हो गई. कोई कहेगा तेरे ब्रह्म जैसा कुछ है नहीं, ठीक है नहीं है, चले जाओ वहां से, वो छोड़ दो या मौन बैठे रहो. उसे ये समझ ये सुन के समझाने की किसी को भी चेष्टा करना नहीं. हे देवों में श्रेष्ठ, नाम रूपात्मक ये सब जगत है. त्रयम् वा इदम् जगत के बारे में शास्त्र की व्याख्या है, त्रयम् वा इदम् नाम रूप कर्म. तो ये जो जगत जो है वो क्या उत्पत्ति बिना हो सकता है, हो भी सकती है, सकता है यह जगत? ऐसा उन्हें आश्चर्य हो रहा है. और जगत की उत्पत्ति की जो क्रिया है वो बिना कर्ता हो सकती है क्या? बोले नहीं हो सकती. अगर कर्म दिख रहा है, क्रिया दिख रही है, तो उसका कर्ता कोई होगा ही. स्वप्न सृष्टि बन गई है, स्वप्न सृष्टि उत्पन्न हो गई, तो उसका कर्ता है कौन है? तो मैं, मेरा मन उसका कर्ता है, सूक्ष्म शरीर जो है उसका कर्ता है. ऐसे ये जो उत्पत्ति है तो कर्ता तो होगा ही. आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जगत ऐसे ही उत्पन्न हो गया, कोई अणु या परमाणु कोई टकरा गया, मिल गए और उत्पन्न हो गया? ऐसी बात हम मानने को तैयार नहीं है. जो ईश्वर जो है, ईश्वर के अलावा अगर कोई दूसरे को कर्ता भी मानता है तो वो करने की सामग्री जो है वो कहां से लाया, इतना तो सोचो. ये सब कारणों से आप ही सिद्ध हो रहे हैं, फिर भी वो मूर्ख है. यतो मंदास्त्वाम प्रति, वो मंद है, वो मूर्ख है, जो आपके इस उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के सर्जन के बारे में संशय लेते हैं, संशय लाते हैं. अब जरा समझ लीजिए कि मांडू के उपनिषद में आया कि उत्पत्ति हुई ही नहीं है. मुंडक उपनिषद बता रहे हैं यथोर्ण नाभि सृजते गुण तेज तैतरीय उपनिषद बताते हैं कि आत्मा में से ये सब उत्पन्न हुआ. तो ये शास्त्र हमें क्या समझाना चाहते हैं इतना समझ लीजिए. देखिए, दो प्रकार के लक्षण है ब्रह्म के, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण. लक्षण यानी कि संज्ञा जिसे जाना जाता है. स्वरूप लक्षण यानी ऐसे लक्षण, ऐसे विशेषण, ऐसे गुण जो वो चीज के साथ, वो परिस्थिति के साथ हमेशा रहते हैं, परमानेंट. जल है तो जल का स्वरूप लक्षण क्या हो गया? गीलापन. तो गीलापन जो है वो जल के साथ हमेशा रहता है. जल में से गीलापन निकाल लीजिए तो वो जल नहीं रहेगा, भाप बन जाएगी, हवा हो जाएगी, गैस हो जाएगा, फॉर्म बदल जाएगा, जल नहीं रहेगा. तो उसके साथ रहने वाले हैं हमेशा, कोई भी परिस्थिति में, कोई भी समय में. और तटस्थ लक्षण यानी वो लक्षण कोई एक देश में, कोई एक पर्टिकुलर स्थिति में, अवस्था में वो लक्षण उसके साथ रहता है और कभी नहीं भी होता है, हमेशा वो लक्षण उसके साथ रहता है ऐसा नहीं. पर वो लक्षण, एक बात ध्यान रख लीजिए कि वो तटस्थ लक्षण उसके साथ होने से या नहीं होने से उसका जो मूल स्वरूप लक्षण है उसमें कोई फेर नहीं आता। मिसाल के तौर पर पानी का ही दृष्टांत ले लीजिए। पानी का स्वरूप लक्षण क्या है? गीलापन। अब वो पानी में मैं नींबू डाल देती हूँ और शक्कर डाल देती हूँ और क्या हो गया, मैंने शरबत बना लिया। हाँ, तो नॉट नेसेसरी कि हर बार पानी का ग्लास मेरे पास आएगा तो वो खट्टा और मीठा ही लगेगा, वो शरबत जैसा ही लगेगा। नॉट नेसेसरी, कभी ऐसे ही पानी प्लेन भी आ जाएगा। पर दोनों पानी में स्वरूप लक्षण क्या है? भाई गीलापन, प्यास बुझाने का गुणधर्म दोनों में है, पर हर बार वो पानी नींबू वाला हो जरूरी नहीं है। ऐसे ही ब्रह्म के स्वरूप लक्षण को जान, ये शास्त्र इसलिए पढ़ने चाहिए, श्रवण इसलिए करने चाहिए कि मुख्य मूल जो सिद्धांत जो है, बेस जो है, वो बराबर आपका मूल जो ऐसा ठोस हो जाए कि भाई यही है, तो फिर आत्म साक्षात्कार में सब जो मन जो विघ्न खड़ा करता, सबसे बड़े विघ्न हमारा मन ही उत्पन्न करता है, तर्क उत्पन्न करता है कि ये जो है ऐसे नहीं हो सकते, तो आपके सिद्धांत को एकदम परिपक्व बना लीजिए। इसीलिए हम प्रकरण ग्रंथ को पढ़ाने में इतने उत्साहित और आग्रही है, वो इसीलिए। तो ब्रह्म के स्वरूप लक्षण क्या है? तो बोले सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सत्य है, यानी हर बार तीनों काल में सर्व देश में वो है, अस्ति है। पर ये सत्य कैसा है, ये सत तत्व कैसा है? तो बोले तीनों काल में है पर कैसा है, अपरिवर्तनशील है, जैसा है ऐसा ही है, कम नहीं होता है, बढ़ता नहीं है, ऐसे के ऐसा ही नितांत है, अपरिवर्तनशील, तीनों काल में रहना वो सत है। ब्रह्म में और कौन से चिन्ह है? तो बोले जो ज्ञानम, यानि कोई भी चीज को जानने की जो व्यवस्था है, जानने की जो वृत्ति जो है ना, जानने की जो शक्ति हमारे भीतर है, जानना वो अलग बात है, पर जानने की शक्ति, ये टेबल है, ये जानने की जो शक्ति भीतर सूक्ष्म जो घटना घटती है जानने की, वो परमात्मा, वो ब्रह्म का लक्षण है। यानि इससे मुझे क्या लाभ है? तो बोले कि ये जगत में जो कोई भी चीज आप जानो, जिसे जानते हो वो ब्रह्म नहीं है, पर जिस चीज से जानते हो, जो इंस्ट्रूमेंट जो है वो ब्रह्म है। जानने की अगर आप कुछ जान सकते हैं वो भीतर, तो ये आपको मैं चीज बताती हूँ, तो दूर बहुत भाई बैठे हैं, उसे नहीं जाना चाहिए कि ये क्या बताया है हाथ में, उनको लगेगा ये घड़ी है या पेपर वेट है, उनको भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये जो भीतर, उनके भीतर बैठे बैठे जिसने क्वेश्चन किया कि इतना दूर बैठा हूं तो दिख नहीं रहा है कि ये क्या है, तो मैं जान नहीं सकता हूं, ऐसा जो आपके भीतर जो कोई बता रहा है कि ये मैं जान नहीं सकता हूं, तो जानने और नहीं जानने की जो फैकल्टी जो है, वो जो प्रिंसिपल जो है, मेन प्रिंसिपल जो भीतर बैठा है, जो जानते हैं और नहीं जानते की चेष्टा को बताने वाले है, जो रिजल्ट देने वाले है, ये रिजल्ट देने वाला है वो ज्ञानम, वो चित्त शक्ति जो जानने वाली है वो परमात्मा की है। नहीं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई हम सब कुछ नहीं जानते तो परमात्मा मेरे भीतर नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके भीतर जो कहने वाला है कि ये मैं नहीं जानता हूं, वो किसने जाना? वो परमात्मा है और वो मेरे भीतर है, वो ज्ञानम, ये लक्षण परमानेंट रहते हैं आपके भीतर। और अनंतम, अनंतम यानि उसका कोई भी देश में, कोई भी काल में, कोई भी वस्तु से उसका अंत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब में अस्थिभाति प्रिय रूपेण अनुस्यूत है। तो यहां इस प्रकार जब हम उत्पत्ति स्थिति की बात कर रहे हैं, तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म स्वरूप लक्षण हो गए, ये ठोस समझ लीजिए, ये परमानेंट मेरे साथ रहेंगे। तो ये उत्पत्ति स्थिति की बात की, वो क्या है? तो तटस्थ लक्षण है, ये ब्रह्म के तटस्थ लक्षण है। तटस्थ लक्षण यानी क्या? अब आप मुझे जवाब दे सकते हैं कि वो ये जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय जो है, मैं यहां से कहती हूं कि ये तटस्थ लक्षण है, यानी क्या? यानी क्या आप क्या सोचेंगे? मैंने पानी के दृष्टांत से आपको बता दिया, और अगर अभी शास्त्र आपको बता रहे हैं कि उत्पत्ति स्थिति और लय तटस्थ लक्षण है, तो हमें क्या विचार आना चाहिए? आपको सोचना पड़ेगा, ये आदत डालिए। हाँ, हाँ, तटस्थ लक्षण हमेशा नहीं होते। देखिए, स्वरूप लक्षण याने हमेशा उसके साथ होता है, तटस्थ लक्षण याने हमेशा उसके साथ नहीं होता। इतना हमें विचार आ जाना चाहिए, नहीं आया तो अब कीजिए। ऐसे घर पे बैठ के आपको यही करना है, कोई भी पुस्तक, कोई भी श्लोक, कोई भी मंत्र लेके ये विचार करना है, मैं विचार गलत कर रहा हूं और सही, उसके लिए हम बैठे हैं, आके पूछिए, हमें बता देंगे। तो तटस्थ लक्षण जब हम कहते हैं तो पहला विचार हमें क्या आएगा कि भाई लक्षण कोई एक देश में, कोई एक काल में, एक परिस्थिति में ब्रह्म के साथ तो है, पर ये ब्रह्म का सच्चा स्वरूप लक्षण नहीं है। कभी कभी होगा, कभी नहीं होगा। ओहो, उत्पत्ति स्थिति और लय, कभी ये लक्षण ब्रह्म के साथ होगा और कभी नहीं होगा, तो ये कैसे होगा? तो बोले कि जब तक मैं ये शरीर, मन और बुद्धि हूं, ऐसा अज्ञान जब तक मुझ में है, तब तक वो व्यक्ति के लिए ये जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय है। और यही बात ब्रह्म सूत्र में बताई गई है। जन्माद्यस्य यतः, ये जो दूसरा जो सूत्र है, हाँ, शास्त्र योनित्वात् अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्य, शास्त्र योनित्वात् की बात अभी नहीं है। जन्माद्यस्य यतः, ये दूसरा सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भाई ब्रह्म की जिज्ञासा करो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, सर्वत्र है, मन और बुद्धि का विषय नहीं है, तो जिज्ञासा कैसे करेंगे? भाई कुछ तो आधार चाहिए ना, और आधार के लिए आपको दिया जन्मादेश। परमात्मा को देखो, ऊपर सूरज दिख रहा है, देखो वो परमात्मा, उसमें वो परमात्मा देखो। जगत ईषधि युक्त सेवनम अष्टमूर्तिवृत देव पूजनम, ये हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। पता तो हमें भी है यहां बैठे बैठे कि जगत की उत्पत्ति नहीं हुई है, न निरोधो न चोत्पत्ति ही, न बद्धो न च साधक, न मुक्ति न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता, पता है, पर क्या अनुभव हो रहा है? नहीं, इसीलिए तटस्थ लक्षण का सहारा दिया है। बराबर समझिए, तो जन्माद्यस्यतः ये दूसरे सूत्र से सहारा दिया है, पर यह तटस्थ लक्षण है। ऐसे साधक को जानना चाहिए कि जब तक शरीर मन बुद्धि में सत्य बुद्धि है, जगत में जब तक सत्य बुद्धि है, जब तक मन सुख दुख का अनुभव कर रहा है, जब तक बुद्धि निर्णय ले रहा है, और निर्णय ले रहा है कर्ता भाव से कि ये मैंने किया, ये मेरे वजह से हुआ, अहम कर्ता अहम भोक्ता भाव जब तक है, तब तक ये जगत है। तो मुझे क्या करना है? जब तक आपके लिए जगत सत्य है, तब तक ये जगत में अब मेरी वृत्ति कीजिए। सर्वत्र ब्रह्म, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये पुरुष तक लेकर मुझे ही आप पूजिए। और ये जो तटस्थ लक्षण है, वो परमात्मा ने अपने विभूति योग में और विश्वरूप दर्शन में 10वें और 11वें अध्याय में कृष्ण परमात्मा ने ये बात की है कि जगत है, मिथ्या है, अर्जुन जी मैं भी जान रहा हूं, फिर भी आपकी मुझ में ऐसे ही वृत्ति नहीं होगी। अगर मैं आपको कह दूं कि ये सत्यम ज्ञानंतम अनंतम ब्रह्म तेरे सामने खड़ा है अवतार लेके, और मुझे भी तो भूल जा, तेरे भीतर जो मैं अर्जुन ऐसा आप बोल रहे हैं, तो अर्जुन को निकाल दे, मैं हूं वही तेरा स्वरूप है, तो क्या समझ में आ जाएगा? दो ही मिनट में समझने वाली ये बात है? नहीं। और इसीलिए कहा कि देखिए, सब जगह मेरा धीरे धीरे दर्शन करना शुरू कीजिए, पर मैं दर्शन तभी करूं जब आप उसमें है, जब वो आत्मे से उत्पत्ति हुई होगी ये जगत की, तो ही मैं जगत में आपको देखूंगा। इसलिए परमात्मा ने कहा कि ये जगत की उत्पत्ति नहीं हुई है, फिर भी कहा कि ये मेरे में से उत्पन्न हुई है। बीज स्यांतरिवांकुरो जगत इदम प्रांग निर्विकल्पम पुनः, बीज और अंकुर का दृष्टांत लेके भी यही बताते हैं, ये न केन प्रकारेण, पूरी बात को एक ही छोटी सी बात में ला दे, तो ये परमात्मा में से जगत की जो उत्पत्ति हुई है, वो सब उत्पत्ति परमात्मा में से ही हुई है। यानी अब मैं जिसे देखूं, मैं उसे ही देखती हूं, ये स्मृति याद आनी चाहिए। ये स्मृति ज्ञानम है, ये स्मृति हमेशा आपके साथ है। पर ये और ये विषय में बहुत सारी मेरी वासनाएं आ गई, मेरे चित्त का चांचल्य आ गया, पीछे के जन्म के संस्कार, ये जन्म के अच्छे बुरे संस्कार, आदतें, व्यसन, ये सब बीच में आ गया और यहाँ जाते जाते वृत्ति, ये आंख जो देख रही है वो परमात्मा ही है, वो चली जाती है और सत्य बुद्धि विषय बुद्धि हो जाती है। ये विषय बुद्धि को अविषय करने के लिए ये सब प्रवचन, श्रवण, कीर्तन, स्तुति प्रयोजे गए हैं। इतना ध्यान रख लीजिए। तो कहा ये सब जो बातें हैं वो मूर्खों की बातें हैं, आपके बारे में ज्यादा ये तर्क करने से तो अच्छा है कि मैं मान ही लूं कि जगत की उत्पत्ति ये परमात्मा से हुई है, बात खत्म हो गई। अब क्या करना है उसके आगे के बारे में जीव को सोचना चाहिए, इतना ही ये कहते हैं। अब कहते हैं कि इतने से भी कुछ रुक नहीं जाता, बहुत संप्रदाय, अलग अलग विद्याओं के संप्रदाय वाले लोग हैं, बहुत अपनी अपनी रीत से वो परमात्मा को जानने की चेष्टा करते हैं। यानी वेद जो है अंतिम सत्य है, अंतिम प्रूफ है परमात्मा का, वो वेद का सहारा न लेने से दूसरे अपने अपने मतों का सहारा लेते हैं, तो वो सब जानते नहीं, मेरे दया के पात्र है। देखिए, जो परमात्मा को ये प्रक्रिया से, प्रक्रिया यानी वेदांत की प्रक्रिया से, प्रक्रिया यानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास विधिवत उपसन्न हो, बिना विधिवत उपसन्न हुए बिना ही खुद अपने मन में वो परमात्मा की, घर बैठे बैठे परमात्मा की कल्पना करने जो वाले हैं, वो हमारे लिए द्वेष और घृणा के पात्र नहीं होने चाहिए, एट द मोस्ट हमारी दया के पात्र होने ही चाहिए, और साधक के लिए तो पात्र ही नहीं होने चाहिए। आप दूसरे के अंदर इतने मत किसी के बारे में सोचिए, खुद पहुंच जाइए ना पहले, देन यू हैव इनफ टाइम, पूरी लाइफ है दूसरों के बारे में सोचने की। पर पहले अपने बारे में सोचिए, ये गलत, इसने ये किया, आप फॉरगेट इट, क्या फायदा है, हमारा समय खा जाते हैं, आपको पता नहीं लगता है। तो बोले ये सब पुष्पदंत जी बताते हैं कि ये सब जो है साधक जो है, जो ये स्तोत्र मेरा सुनेगा उसे पता लग जाना चाहिए कि अंत में तो परमात्मा में ही जा रहे हैं। तो ये जो मार्ग वेद का ले लिया है तो अब इधर उधर मत भटकिए, किसी का कोई सुन लिया, ऐसे प्रचारक भी आपको मिलेंगे ये जगह पे, सभी जगह पे मिलेंगे। ये जो प्रचार जो करते हैं कि वेदांत से अन्य, वेदांत में बताए गए कोई अन्य विधि से परमात्मा ये जगत का उत्पन्न हुआ है, ये हुआ है, ऐसी सीडी और कैसेट देने वाले यहीं भी आपको मिलेंगे। सावधान रहना, वो हमारे दया के पात्र है, उसे ये समझाना नहीं है, उसका अधिकार भी नहीं है ये सुनने के लिए। हाँ, पर इससे आप दूर रहना, ये चेतावनी पुष्पदंत जी हमें दे रहे हैं। इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंच गए, अब क्या भटकना और बदलना। हाँ, तो ये कहते हैं त्रयी सांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमद पथ्यमिति च रुचीनाम वैचित्र्यात् ऋजुकटिल नाना पथजुषाम नृणामेको गम्यः त्वमसि पयसामर्णव इव। आहा, तीन वेद है, सांख्य शास्त्र है, योग शास्त्र है, पाशुपत दर्शन है। तो भाई ये सब दर्शन कहाँ से आए और दर्शन कहके प्रस्थापित कैसे कहे गए? तो किसी ने ये परमात्मा को पृथ्वी तत्व तक जान लिया, पृथ्वी तत्व में अस्थि, ये सब अस्थि वाले हैं, ऐसा नहीं है। सांख्यवादी है, देखिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, पुराण, इतिहास, वेद, उपवेद, ये सब अस्थि वाले है, पर उनकी अस्थि कहाँ जाके अटक गई है? तकलीफ वहां है और वहां रह गए कि भाई हम सिर्फ पृथ्वी तत्व से सिर्फ मूर्ति को ही मानते हैं और वहां रुक गए, साधना आगे नहीं की और उनको वो रुक गए परमात्मा की प्रार्थना करते हुए, और उनको देख के उनके दृष्टि वाले जितने रुक गए वो मत बन गया। थोड़े आगे चले तो पानी जल तत्व को पूजने वाले वो वहां रुक गए, आगे समझाने वाला कोई गुरु नहीं मिला, या गुरु मिलने से उपसन्न नहीं थी, या शरीर इतना दुर्बल था कि अभी ज्ञान नहीं ले सकते और वहां रुक गए, और उनको देख के उनके साथ रुक जाने वाले वहां जल तत्व तक रुक गए और मठ बन गया। एक वाद बन गया। आगे गए कोई अग्नि तत्व को मानने वाला, वो वहां रुक गया, उसके साथ थोड़े रुक गए और वहां एक पंथ बन गया। किसी ने आकाश से परमात्मा को जाना, पर आकाश के भी पार वो परमात्मा है, आकाश का भी पारण है, इसलिए आकाश का भी आकाश से भी सूक्ष्म है। और ये सब जो रुक गए वो कुछ गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? ये परमात्मा वाणी और मन का भी आप सोचिए, ये मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, कैसे बोल सकते हैं और हम कैसे सुन सकते हैं। ये मन और वाणी का भी अविषयी वो परमात्मा जानने की चेष्टा कोई इतनी सरल है क्या? हाँ, रुक जाना बहुत सहज है। हम भी अपने कितने जन्मों में ऐसे रुकते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं। ये आत्मा शब्द कान में जाना भी दुर्लभ और दुर्गम है। तो जो रुक गए वो हंसी के पात्र नहीं है, पर वहाँ रुक जाना गुनाह है इसीलिए। और ऐसे ये वाद जो है, जो पंथ जो है, जो मत है, सांख्यवाद है, अणु का वाद है, परमाणु का वाद है, कपिल मुनि का वाद है, ये सब जो वादी है, ये सब शून्यवादी है, बौद्ध मतवादी है, ये जो मीमांसक है, वो ऐसा क्यों हुआ है, क्यों रुक गए? तो यहां कहा है रुचि नाम वैचित्र्यात्। कोई भी ऐसा रुका हुआ, ये रुका हुआ यानी ये अष्टमूर्ति जो है उसी में परमात्मा को मानने वाले, उससे अलग ये जो परम तत्व भीतर भी है उसे नहीं मानने जो वाले हैं, वो कैसे है? वो रुचि नाम वैचित्र्यात्। भाई ऐसा क्यों हुआ है? हमें आश्चर्य होना चाहिए कि कोई मूर्ति को ही परमात्मा मानता है तो कोई मूर्ति को मानता ही नहीं है, आकाश को ही मानता है, कोई जल को ही मानता है, हाँ, कोई अग्नि को ही मानता है। तो ऐसे रुकने वाले हैं वो क्या है, वो क्यों है? तो आज जान लीजिए, और आज जानने के बाद हम तो इधर बैठे हुए तो तर्क नहीं करेंगे कि भाई रुचि नाम वैचित्र्यात्। आहा, और ये रुचि नाम वैचित्र्यात् आपके व्यवहार में भी, घर में भी, संसार में भी लगा दिया ना तो चिंता खत्म हो जाएगी कि ओहो, रुचि नाम वैचित्र्यात् से इतने बड़े पंथ बन गए हैं तो मेरे घर में भी रुचियां अलग अलग सबकी होगी। इट्स ओके, रुचि नाम वैचित्र्यात्। आप पुष्पदंत जी बन जाइए ना, क्या हर्ज है? स्वीकार कर लीजिए, यहाँ स्वीकार है सबका, कि हमें स्वीकार यह है, आप हमारे दया के पात्र हैं, कभी हम भी ऐसे दे हा? वो मत भूल जाइए। रुचि नाम वैचित्र्यात्, टेक इट लाइटली इजी, ये साधक का ये गुण है, सब चीज को लाइटली और इजीली ले, सब चीज को, क्योंकि जो मुख्य है वो परमात्मा है, उसके विषय को जानने के लिए आपकी शक्ति को लगा दीजिए। ये रुचि की विचित्रता से है, हे प्रभो, ये जो मार्ग जो है सरल और कुटिल, ऐसे मार्गों को आश्रय करने वाले, जैसे पानी समुद्र में मिलता है ऐसे आप में सब मिल जाते हैं, वो जानते नहीं है। सर्वदेवम नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति आकाशात पतितम तोयम यदा गच्छति सागरम। आकाश से जो जल प्रपात नीचे हो रहा है, पानी बरस रहा है, वो अंतिम तो सागर देव में ही मिल जाते हैं। ऐसे कोई भी देव को नमस्कार करो, हे परमात्मा आपको ही जाने वाले हैं, तो मूर्ति को नमस्कार करने वाला भी उसे परमात्मा का, उसका नमस्कार परमात्मा का तक पहुंच जाता है, तो मूर्ति को जो नमस्कार कर रहा है, जल को कर रहा है, उसकी मश्करी हम कैसे कर सकते हैं, उसका द्वेष हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो नमस्कार तो कर रहा है। हाँ, इतना सोचिए और इसमें से आपकी बुद्धि को निकाल दीजिए। अब ये जो श्लोक है, श्लोक का गान कर दे, कल उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे, दो मिनट है हमारे पास, ये श्लोक हम उच्चारण कर लेंगे। महोक्ष खट्वांगम परशुरजिनम भस्म फणिनः कपालम चेतियत् तव वरद तंत्रोपकरणम् सुरास्ताम् ताम्रुद्धिम् ददति तु भवद्ब्रूप्रणिहिता नहि स्वात्मा रामम् विषय मृगतृष्णा भ्रमयति। अभी ये इतनी सुंदर बातें की है कि हे परमात्मा, परमात्मा के पुराण सिद्ध सगुण स्वरूप का वर्णन है और उनका महिमा देखिए। हमारे लौकिक व्यवहार में भी हम क्या करते हैं, किसी को मिलते हैं तो ये चर्म बुद्धि जो है हमारी, सामने वाले का स्टेटस नापने लगती है, और नापने के साधन भी कैसे हैं, भाई उसने क्या पहना है, क्या ब्रांड है, क्या है, ब्रांडेड कहते हैं ना सब चीज को, हा? क्या है, और कीमत लगा दी, चर्म बुद्धि है। अष्टावक्र जी ने कहा था, अष्टावक्र जी आठ अंग से टेढ़े थे। जनक राजा की सभा में आए तो सब हंसने लगे, तो बोले ये चमारों की सभा में, देखिए ये ज्ञानी की खुमारी है, ये ज्ञानी का लक्षण है। सभा में जनक राजा की सभा में, जनक तो सम्राट थे, यानी पूरी पृथ्वी उनके हाथ में थी, ये तो सब फिर हुआ। पूरा एक सार्वभौम राज्य वाले राजा के दरबार में आके भी वापिस चले गए। बुलाया था उनको भी, शास्त्रवाद प्रवचन करने के लिए भी बुलाया था। क्यों? बोले आप हंसे वो इनफ हो गया, बस आपने बता दिया हम कहां तक है, हम चमार है। चमार याने जो चमड़े जूते बनाने वाले होते हैं, उसकी नजर चमड़े में ही होती है। हा? इस प्रकार अब मेरे ऊपर के स्थूल शरीर को आप देखो और मुझे आप नापने लगे, बात खत्म हो गई। साधक को इतना ही करना है। यहां ये जो पुष्पदंत जी ने ये जो बात की है, हम शब्दार्थ में जाएंगे तो पता लगेगा कि साधक को ये नापने वाली जो वृत्ति है ना दूसरे की, उससे खट जाना चाहिए। अगर आप आपको साधक कहते हैं, शिष्य कहते हैं, परब्रह्म को जानने के लिए चले हैं, तो ये नापना बंद कर देना कि इसका स्टेटस क्या है। उसके पास ज्ञान है तो ले लीजिए, नहीं तो मुड़ जाइए। कितने को आप नापेंगे सुबह से रात तक? यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। बात खत्म हो गई। नाप क्यों? परमात्मा कहते हैं कि नापने की सब परिसीमा को तोड़ दी है, ऐसी घर बकरी और ऐसा श्रृंगार करके रखा है कि ये नापने की जो भावना है, शिव की जो सामग्री है वो देख के कोई नापना ही भूल जाएगा। और इसीलिए उसका वर्णन हमारे सामने किया है। शिव जी को क्या कहना है कि मैं ये सब चीजें क्यों रखता हूं, इसकी कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, कोई ऐसा सौंदर्य नहीं है। तो आप सोचिए कि जो भी कोई भी अपने पास कुछ श्रेष्ठ या सौंदर्य रखेगा तो ये इक्वल टू ये है। जब साधक को सुवर्ण में भी ये लगने लगेगा, सुवर्ण भी ये हड्डी जैसा चर्म जैसा लगने लगेगा, तब समझना कि वो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हम काबिल हुए हैं। तो क्या सुवर्ण रख दे बाजू में? रखना नहीं है, उसके अंदर जो वैल्यू डाली है वो वैल्यू को निकाल लीजिए। तो भाषांतर करके हम रुकेंगे। हे इष्ट वरदान देने वाले महादेव, आपके कुटुंब के पोषक जो है वो साधन कैसे है? तो नंदी जी है, खटवांग है, फर्शी है, एक प्रकार का एक शस्त्र है, और क्या है आपके पास घर में? तो बोले मृग चर्म है, भस्म है, परमात्मा के ड्रेसिंग टेबल के ऊपर क्या है? बोले भस्म है। और परमात्मा का आईना क्या है बताए? हमारे ड्रेसिंग टेबल में हमारा आईना बहुत है, तो बेल्जियम से कहां से आता है वो आईना? अच्छा ग्लास बेल्जियम का ग्लास आता है। परमात्मा का आईना क्या है बता है? ये पूरा माया का जो आवरण जो झुंबन है वो उनका आईना है, वहां खड़े खड़े मेकअप करते हैं। और टेबल के ऊपर सामग्री क्या है? तो बोले भस्म है। और क्या है अलंकार? क्या है कान कुंडल पहनने के लिए? तो बोले सर्प है, और थोड़ी ज्यादा नहीं थोड़ी खोपड़ी थोड़ा स्कल है। हाँ ये जो शरीर का मानव शरीर का जो स्कल है वो है, इतना ही है। फिर भी देव आपके एक ब्रुटकुटी के इशारे पर ही वो अनंत समृद्धि को धारण करने में शक्तिमान हो जाते हैं। आपकी सामग्री ऐसी है पर आपकी कृपा आपका संकल्प, एक ब्रुकुटी ऐसी भी हो गई, ब्रुकुटी यानी कि कोई देव आ रहा है ना, देवत्व वाली व्यक्ति आ रही है और परमात्मा ने उसे देखा कि उसके पास कुछ है नहीं और नजर कही ना कि ये मेरा शिष्य ऐसा है, और उसके पास सब समृद्धि आ जाती है। तो आपके पास भले समृद्धि ऐसी है फिर भी आपसे ही सब समृद्धि मुझे मिल रही है। फिर भी हे परमात्मा, सच विषय रूप ये जो जल है वो अपने आत्मा में ही आनंद, विषय रूप जो जल है वो आपके लिए मृगजल समान है और आप अपने स्वात्मा में ही आनंद करने वाले हैं। इसीलिए जगत की कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति आपको प्रलोभन नहीं दे सकती, ये बताना है। इसके ऊपर थोड़ा सूक्ष्म विचार, समय हो गया है, कल जब हम फिर से मिलेंगे तब इसके ऊपर विचार करेंगे। तब तक हमें क्या करना है याद रख दीजिए, ये जो वैल्यूएशन है चर्म बुद्धि निकाल लीजिए, हो सके उतना मौन रखिए, और आपका गवाद आकार वृत्ति जो है वो ये न के न प्रकारेण संभाले रखिए। वृत्ति टूटती है तो उसका नाम ले लेना, जिस क्षण आप उनका नाम लेंगे उस क्षण के लिए वो थोड़ी देर के लिए आप वो हो जाते हैं। उसके बारे में कल हम प्रकाश करेंगे, तब तक परमात्मा का नाम स्मरण लेके आपकी जो वृत्ति जो है उसे भगवद आकार टिकाए रखिए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।